जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरा भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी हरि बोल हरी हरि शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरिनाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ जय श्री कृष्ण न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरी हरी बोल एवरीवन हरी हरी बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्णा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हम सबकी बुद्धि में विराजमान हो अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनकी इंस्ट्रक्शंस को उनके गीत को ठीक से समझ सके और अपने जीवन में भी अपना सके ना? और जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ कर चुके हैं जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। तो आज तक जो हमने समझा उसको समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम सब समझ चुके हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य संपूर्ण रूप से हैप्पीनेस को आनंद को प्राप्त करना है। हम सब एक्चुअली खुश होना चाहते हैं परमानेंट हैप्पी होना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए फ्रेंड्स हमें कंप्लीटली हेल्दी होना है और कंप्लीट हेल्थ के 5 कंपोनेंट्स हैं स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ फैमिली हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ है ना। इन 5 हेल्थ में हमें बैलेंस लाना है और इसको अचीव करने के लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पर फोकस करना है। स्पिरिचुअल हेल्थ आधार है बाकी सब हेल्थ का। तो स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर करने के लिए हमें अध्यात्म के 4 स्तंभ सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते पर चलना है ना। सत्संग पे हम बात कर चुके हैं साधना के बारे में हम बात कर चुके हैं सेवा के बारे में बात कर चुके हैं और उसका 4th कंपोनेंट सदाचार के बारे में भी हमने कल बात की है। तो कल हमने सदाचार जो कि स्पिरिचुअल लाइफ का 4th पिलर है गुड बिहेवियर पर हमने बात की है कि सदाचार को लाएंगे अपने जीवन में गुड बिहेवियर को अपने जीवन में लाएंगे और साथ साथ में सत्संग साधना सेवा करेंगे तो फिर हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की स्पीड बहुत बढ़ जाती है ना। तो सदाचार का अर्थ और महत्व हम जान चुके हैं फ्रेंड्स है ना कि हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी है दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है और साथ साथ में हमें कड़वे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। तो हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सदाचार के ही टॉपिक पे कि हमें किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए हमें कड़वे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए उसके लिए हमें एप्रिसिएशन करनी चाहिए। तो हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रशंसा एप्रिसिएशन किस प्रकार एप्रिसिएशन लीड्स टू पॉजिटिविटी चेन रिएक्शन कैसे एप्रिसिएशन लीड्स टू हैप्पी रिलेशंस है ना। तो एक सदाचारी व्यक्ति का एक चरित्र होना चाहिए उसका एक करैक्टर होता है ना हर व्यक्ति का एक करैक्टर होता है। तो जो भगवान के रास्ते में जो चल रहा है जिसके जीवन में सदाचार आ चुका है ना तो पहले तो वो किसी की निंदा नहीं करता जो भी व्यक्ति लोग उसके जीवन में होते हैं उनके बारे में वो कुछ नहीं कहता उसके बात करने के तरीके में हार्शनेस नहीं है कड़वाहट नहीं है और दूसरा जब भी हो सके वो हमेशा दूसरों की अच्छी क्वालिटीज को हमेशा प्रेज करता है और कहीं ना कहीं वो इसलिए प्रेज करता है कि दूसरा मोटिवेट हो जाएगा है ना। चाहे उसको वो व्यक्ति अच्छा नहीं भी लगता लेकिन फिर भी सदाचार उसके जीवन में होता है तो वो व्यक्ति उसे अच्छा लगे या ना लगे लेकिन वो इसलिए भी उसकी प्रेज करता है ताकि वो मोटिवेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो जो नया नया चलने शुरू करते हैं तो क्या दुनियादारी के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है ना। कोई बड़ी बात नहीं है सबके बच्चे ऐसे नया नया चलना शुरू करते हैं नया नया खड़ा होना सीखते हैं लेकिन हम एज ए पेरेंट उस बच्चे को एनकरेज करने के लिए हम उनको क्या कहते थे याद करो हम हमेशा खूब मोटिवेट करते हैं उनको है ना बहुत खुश होते हैं हम ताकि वो और स्टेप्स ले तालियां बजाते हैं है ना। कितना अप्रिशिएट करते थे हम अपने बच्चों को क्योंकि ये छोटा सा स्टेप उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था है ना। लेकिन बाद में क्या होता है हमारे साथ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो कुछ भी करते हैं, हम उनको अच्छे वर्ड बोलना ही बंद कर देते हैं। ज्यादातर हम पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट करना ही बंद कर देते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। और ये खाली बच्चों के साथ ही नहीं होता, हम अपने बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी ऐसा ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रेस्टोरेंट में जाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन घर में मदर्स या वाइव्स रोज मेहनत कर रही हैं, है ना, लेकिन हम कमी निकालते रहते हैं कि आज नमक कम है, आज मिर्ची ज्यादा है, अच्छा नहीं बना आज तो खाना। लेकिन महीने में कितनी बार हम अच्छा खाना खाते हैं, बट कभी भी हम अपनी मदर्स को या जो हस्बैंड होते हैं अपनी वाइफ को बोल ही नहीं पाते कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, है ना, कि मम्मा आज बहुत अच्छा खाना बना है। हस्बैंड वाइफ को बोले कि आज बहुत अच्छा खाना बना है, तो क्यों नहीं बोल पाते फ्रेंड्स हम, पहले इसको समझते हैं। देखो फ्रेंड, एक तो प्रशंसा, किसी की अच्छी क्वालिटीज की प्रेज करना अच्छी बात है, है ना, किसी की दूसरे की अच्छी क्वालिटीज की हम प्रेज कर रहे हैं, है ना, इसको एक डिवाइन क्वालिटी माना गया है, दिव्य गुण माना गया है भगवद गीता में भी, है ना। और दूसरा, इसलिए भी अच्छा बोलना क्योंकि कई बार उस पर्सन की कैपेसिटी के हिसाब से, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा 40% पर है, मान लो उसके फिफ्थ में 40% नंबर आए, है ना, लेकिन अगर उसको अप्रिशिएट किया गया ये 40% पे भी कि नहीं कोई बात नहीं आप नेक्स्ट ईयर करोगे तो और अच्छे नंबर आएंगे, है ना, उसको डांटा नहीं गया और उसको अप्रिशिएट किया गया, तो वो बच्चा अगर 60% पर आ गया तो क्या उसकी पहले से ज्यादा प्रोग्रेस है या नहीं। लेकिन हम किसको प्रोग्रेस मानते हैं, हम मानते हैं कि 98% वाला ही प्रोग्रेस कर रहा है, जो 40 से 60 पर आ गया है वो तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, कितने नंबर आए, हम खुद ही उसको डिमोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को, 60% नंबर आया यार बहुत कम नंबर है, दूसरों के तो इतने नंबर आ जाते हैं, मेरे रिलेटिव के बेटे के, मेरे फ्रेंड के बच्चे के तो इतने नंबर आए हैं, तो हम कंपैरिजंस में फंसे रहते हैं, है ना। देखो जहां पे वो था 40% पर था ना, बट अब वो 60% पर आ गया, लेकिन अगर किसी और का बच्चा, मान लो किसी रिलेटिव का बच्चा 80% पर आ गया, 90% पर आ गया, तो फिर हम अपने बच्चे की तारीफ ही नहीं करेंगे, उसको डीमोटिवेट करते रहते हैं कि तुम तो पढ़ते नहीं हो, मतलब कितना कुछ बोलते हैं हम उनको, है ना। लेकिन वो बच्चा हम ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, वो बच्चा जहाँ पे था ना, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो आगे बढ़ गया है ना, तो आज उसको अप्रिशिएट करना, उसको सराहना करना, उसको एनकरेज करने के लिए अगर हम कुछ वर्ड बोल देंगे, कुछ प्रशंसा के दो वर्ड हमारे मुंह से निकल जाते हैं अगर, तो उसको मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और गोलोक एक्सप्रेस से जुड़कर हमने ये सीखा है कि जहाँ पे लोग उस स्टेज में थे, मतलब जो सिंपल सिंपल हाउसवाइफ्स, ज्यादातर गोलोक एक्स में हाउसवाइफ जुड़ी हुई है ना, तो सिंपल सिंपल हाउसवाइफ जो कहती थी कि हम तो बस घर का खाना बनाती, हम तो कुछ और काम ही नहीं करते, जैसे इसमें अपना भी एग्जांपल देती हूँ, मुझे लगता था कि मैं लाइफ में ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाई, मैं ग्रेजुएशन की हुई है तो मुझे एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी अपने टाइम में, तो मैं नहीं ले पाई थी उस वक्त, मैं साइंस नहीं ले पाई थी, मैंने आर्ट्स लिया था, तो कुछ सरकमस्टांसिस की वजह से, तो क्या मुझे बहुत लगता था भगवद गीता पढ़ने से पहले कि मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, मैं आगे नहीं बढ़ पाई ज्यादा, मतलब अपने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुई मैं, है ना, मुझे भी ये चीज लगती थी, है ना। लेकिन आज देख लो आपके सामने भगवद गीता पढ़ा रही हूँ, जहां पे मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, है ना, मतलब अपने आप को हम खुद ही डीमोटिवेट करते हैं, खुद भी अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए कम नहीं है। सेल्फ टॉक मैं बोलती हूँ ना, हमेशा हमें अपने अपने से सेल्फ टॉक करते रहना चाहिए कि हम खुद से क्या बातें करते हैं, है ना। इसलिए मैं आपको रोज बोलती हूँ, रोज रात को 5 मिनट बैठना है अपने बेड पे चौंकड़ी मार के, अपने पूरे दिन की असेसमेंट करनी है कि आज पूरा दिन मैंने क्या क्या किया, अपने आप से क्या बातें की, दूसरों के साथ मैं कैसी बातें करती हूँ, है ना, और थैंक यू करना है, अपने आभार व्यक्त करना है प्रभु का कि आज के दिन के लिए शुक्रिया कि इतना अच्छा दिन मेरा बीता, है ना, और कल के लिए प्रॉमिस करना है कि इससे भी अच्छा बेस्ट होगा मेरा दिन कल का, है ना। खुद से अच्छी बात करनी है कि खुद को हमेशा डीमोरलाइज नहीं करते रहना है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, इससे क्या होता है हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, है ना। तो आज जो हाउसवाइफ जो बोलती थी कि मैं कुछ कर नहीं पाई लाइफ में, तो वो लोग आज आगे बढ़ रही हैं, मतलब कि अगर भगवद गीता भी पढ़ा रही हैं तो कुछ तो समझ आ रही है ना चीजें कि लाइफ कैसे जीनी है, क्या मैंने गलत किया है या क्या मैं बेस्ट कर सकती हूँ। अब इस चीज को सोच सोच के तो मैं अपना जीवन नहीं बिता सकती ना कि मैं पढ़ी नहीं है ना, वो भी मेरी गलती थी कि मैं पढ़ नहीं पाई, या जो भी सरकमस्टांसेस होते हैं हमारे आसपास के वो भी बहुत मैटर करते हैं। तो उन चीजों को सोचते रहने से बेटर है ना कि हम लाइफ में आगे बढ़े और जो मैं कर सकती हूँ उसको बेटर वे में कर पाऊं, अपना जीवन भी बेटर कर पाऊं और बच्चों के जीवन में भी कैसे चीजें सही करनी है ना। जब हमें खुद पता होंगी तो हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं ना, जब हमें ही चीजें पता नहीं होती तो हम सारी नेगेटिविटी बच्चों को सिखाते हैं। थोड़ा नॉलेज होगी, चीजें पता होंगी तो हम वो चीजें बच्चों में भी डाल पाते हैं। जब हमें चीजें पता नहीं होंगे तो हम मनगढ़ंत बातें बच्चों को भी सिखा देते हैं, खुद भी मनगढ़ंत जीवन जीते हैं और बच्चों को भी यही सिखाते हैं। जो हमारे रिलेटिव ने किया है, हमारे फ्रेंड्स ने किया है, हमें लगता है वही सही है और हम वही बातें बच्चों को भी बोलते हैं, है ना। और हम डीपली सोचे तो हमें फिर समझ आते हैं कि हमने क्या क्या गलतियां की हुई है ना। तो भगवद्गीता पढ़ने से मतलब एक राइट ट्रैक मिल जाता है, समझ आती है चीजों की कि भाई क्या बोलना है, कितना बोलना है और किसको बोलना है ना। तो मतलब एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है। तो हमें ये समझना है फ्रेंड्स कि क्रिटिसिज्म किसी को भी तोड़ सकता है और एप्रिसिएशन किसी को भी बना सकता है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ, आपने सुनी होगी वैसे, बहुत कॉमन स्टोरी है ना, फिर भी मैं बता रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। कि देखो, थॉमस एडिसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब बनाया था, है ना। और स्कूल में बचपन से टीचर्स उनको वीक स्टूडेंट मानते थे, इंटेलिजेंट नहीं मानते थे, है ना। तो एक बार स्कूल वालों ने परेशान होकर, स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी माँ को स्कूल बुलाया और उनको एक लेटर दे दी कि आप इसका स्कूल बदल दो क्योंकि इसमें कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी समझ नहीं पाता, तो आप इसको किसी और स्कूल में डाल दो। लेकिन थॉमस एडिसन की मदर ने बहुत समझदारी से काम लिया। जब वो घर आई तो उनके बेटे ने उनसे पूछा कि क्या बताया आपको प्रिंसिपल ने, तो उन्होंने एक लेटर उसको दिखाई कि ये लेटर दिया है उन्होंने। तो थॉमस एडिसन ने पूछा भी क्या लिखा है इसमें, माँ ने कहा कि इसमें स्कूल वालों ने लिखा है कि तुम बहुत समझदार हो, बहुत सक्षम हो, है ना, तुम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्राइट स्टूडेंट हो, कि तुम्हें इस छोटे स्कूल में तुम्हें भेजने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें बहुत बढ़िया स्कूल में डालने की जरूरत है ना। देखिए, माँ के बात करने के तरीके ने कितना बड़ा काम किया, है ना। और अगर एक छोटे से बच्चे को बोल दिया जाता कि जैसे प्रिंसिपल ने लिखा था उसमें कि तुम सक्षम नहीं हो, जो भी लिखा होगा उसमें, है ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो निराशा से भर जाता, उन वर्ड्स का अपने अंदर इतना प्रेशर ले लेता और उन वर्ड से ही उसकी लाइफ निराशा से भर जाती और वो कुछ नहीं कर पाता जिंदगी में। और उसकी मदर ने देखो कितनी समझदारी से प्रशंसा का उपयोग किया, एप्रिसिएशन का उपयोग किया, है ना। फिर दूसरे शहर के दूसरे स्कूल में थॉमस एडिसन की एडमिशन ली उनकी मदर ने। थॉमस एडिसन को बहुत अच्छा लगा कि मेरी मदर देखो मुझ पर कितना बिलीव करती है, तो उन्होंने बहुत मेहनत करना शुरू कर दी, है ना। मतलब एक एप्रिसिएशन ने उनकी जिंदगी बदल दी। वहां से चलते चलते एक स्टेज पर वो साइंस में आ गए, है ना, और वो साइंटिस्ट बन जाते हैं और बाद में बल्ब का आविष्कार कर देते हैं और बाद में वो महान साइंटिस्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं और उनकी मदर एक्सपायर जब हो जाती हैं, तो वो अलमारी में ना ऐसे चीजें देख रहे होते हैं, तो उनको वही पुरानी लेटर मिलती है जो एक बार मदर ने उनको बाहर से दिखाई थी कि ये मेरे को स्कूल से मिली है, क्योंकि उसमें स्कूल का नाम लिखा हुआ था, मतलब उनके नाम की लेटर थी जो 30-35 साल पहले उनकी मदर को मतलब प्रिंसिपल से दी थी, उनको याद थी ये बात। तो जब वो उसको ओपन करते हैं तो वो उसमें देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि आपका बेटा स्टडीज में वीक है, इसको हम अपने स्कूल में नहीं रख सकते, इसको आप किसी और स्कूल में रखो। तो फिर क्या होता है, एडिसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। देखे कैसे उनकी माँ ने उनकी प्रशंसा की, सारी दुनिया कह रही थी कि किसी काबिल नहीं है ये, स्कूल से निकाल दिया उनको, है ना। उस स्टेज से वो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट बन गए क्योंकि माँ ने उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया और कहा कि बेटा आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये वर्ड थे ना जो कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप कुछ भी कर सकते हो, इन वर्ड्स ने उनका जीवन बदल दिया। तो एप्रिसिएशन का गुण हमें अंदर बिठाना है फ्रेंड्स। और हम क्या करते हैं, आपने कभी सोचा है अपनी लाइफ में, हमें ना इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। एक ये बात बच्चों के लिए भी और किसी और के लिए भी है कि हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते या कोई मेरी बात नहीं सुनता है ना। तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कोई हमारी बात सुनता है या नहीं सुनता है, हमारे बच्चे भी हमारी बात सुनते हैं नहीं सुनता। हमें चिंता इस बात की करनी है कि स्पेशली हमारे बच्चे हमें हमेशा वॉच कर रहे होते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि वो हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। चिंता हमें इसकी करनी है कि वो हमेशा हमें वॉच कर रहे हैं, और ये सबके साथ है ये बात, बट बच्चों के साथ स्पेशली ज्यादा है, क्योंकि हम सारा दिन उनको राइट रॉन्ग बताते रहते हैं, ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। हमने अपने रखे होते हैं क्राइटेरिया, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, और राइट रॉन्ग हमें खुद पता ही नहीं होता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। हमने अपने हिसाब से चीजें बनाई होती है ना, तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत छोटी उम्र से हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और वो बातों को सुनते रहते हैं। बच्चे हमें फ्रेंड सुन नहीं रहे हैं, बट वो हमें देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, ये हम ऑब्जर्व नहीं करते। हमें क्या लगता है कि वो छोटे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो देख नहीं रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं हमें, है ना। अगर आप कुछ ऐसी भी चीजें कर रहे हो फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी ऐसी भी चीजें कर रहे हैं जिसमें वो हमें देख नहीं पाते, हर वक्त तो हमारे आसपास नहीं होते, ऑलमोस्ट टाइम हमारे आसपास होते, लेकिन कई बार हमारे आसपास नहीं भी होते, है ना। तो हम जब ऐसी चीजें कर रहे हैं जब जहां पे वो हमें देख नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो हमारी वाइब्रेशंस का हिस्सा है फ्रेंड्स, उससे हमारा एक नेचर बन रहा है ना, उससे हमारा एक एटीट्यूड बनता है जो भी हम करते हैं, चाहे कोई देख रहा है चाहे कोई नहीं कर रहा देख रहा है ना। बेशक हम जब कह नहीं रहे होते, जब हम बोल नहीं रहे होते, जब हमारे अंदर होती है बात, तो वो सुन नहीं सकते कोई भी, चाहे पेरेंट हो, चाहे कोई हमारे रिलेटिव कोई भी हो हमारे साथ जो रहते हैं, या जो हमारे बच्चे हैं, वो हमें सुन नहीं सकते जो हमारे अंदर होता है, वो हम क्या सोच रहे हैं वो देख नहीं पाते, वो सुन नहीं सकते, है ना। बट वो हमारे आस पास है ना बच्चे, तो वो सब कुछ कंज्यूम करते हैं, कोई भी बच्चे हैं या कोई भी रिलेटिव हैं, तो वो सब कुछ जो एनर्जी फील्ड है ना, वो सब कंज्यूम करते हैं हम, इसलिए तो हमारे रिलेशन बेटर नहीं हो पाते, क्योंकि हमें लगता है मैंने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन अंदर जो हमारी एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी दूसरों को जाती है फ्रेंड्स, वो सारी वाइब्रेशन हम दूसरों को भेज रहे होते हैं। इसलिए बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं शायद वही दूसरे सुन रहे हैं, नहीं फ्रेंड्स ऐसे नहीं है। जो हमारे अंदर होता है ना वो दूसरे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो दूसरे वो कैच कर रहे होते हैं, वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, और इस बात को हम बहुत ही डीपली अगर हम समझे ना तब समझते हैं, और हमें समझने का टाइम तो है नहीं, हम तो ऐसे अंधाधुंध भाग रहे हैं चीजों में, अपनी लाइफ जीने में पता है, चीजें लेने में बस उलझे हुए हैं, ये चीज ले ली वो चीज ले ली, अपनी लाइफ में मस्त हुए पड़े हैं। तो चाहे एक बच्चा है चाहे कुछ कोई भी है, तो जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, जो हमारे बिलीव्स होते हैं, है ना, हमारा जो एटीट्यूड होता है, उनको कंज्यूम करके अपना बनाता है ना। और उसमें चाहे कोई आपकी बात सुन नहीं रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे वो बच्चे हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और शायद ओबे तो छोड़ ही दो, ओबे भी नहीं कर रहे हैं, और शायद दो दिन बाद बात भी नहीं याद रहेगी उनको, बट वो हमारा एटीट्यूड कैच कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैसेज, ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं वो डिफरेंट होता है। तो फिर हमें क्या लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे बच्चे क्यों नहीं सुनते, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बच्चों को बोलते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अपने अंदर से क्या सोचते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम है कि यार आजकल तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो जो ये एटीट्यूड है ना हमारा कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है, अब ये राइट है रॉन्ग है इसकी बात नहीं हो रही है, बट ये हमारा बिलीफ बन चुका है कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है, ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि ये एटीट्यूड है हमारा कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तो जो वर्ड्स हम कह रहे हैं ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे हम बच्चे को कह रहे हैं या किसी और फैमिली मेंबर को कह रहे हैं या अपने ऑफिस में कह रहे हैं, लेकिन अंदर से डिफरेंट सोच रहे हैं कि झूठ तो बोलना पड़ता है, और बाहर तो कह रहे हैं कि झूठ नहीं कहना चाहिए, है ना। और जो हम अंदर से सोचते हैं ना वो फिर व्यवहार में आ ही जाता है फ्रेंड्स एक टाइम डाल के। तो एक तो पॉइंट ये हो गया कि हम अंदर से कुछ सोचते हैं और बाहर हम बोलते हैं कुछ और, तो इसलिए लोगों को वो इम्पैक्ट नहीं होता, ना बच्चे को और ना किसी और को। तो दूसरा क्या ही कैच करेगा, हम कैसे ये सोच सकते हैं कि दूसरा हमारी बात सुनेगा। जो हम बोल रहे होते हैं ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, जो हम अंदर सोच रहे हैं ना दूसरों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि हम इस बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते कि जो हम सोच रहे हैं उस पे हमें वर्क करना है, जो हम बोल उस पे तो ऑटोमेटिकली वर्क हो जाएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात है क्या हम अपने आप से सच बोल रहे हैं, अगर हम सोचते कुछ हो रहे हैं और बोलते कुछ हो रहे हैं, है ना, तो क्या हमारे थॉट्स में इंटेग्रिटी है, क्या मेरे थॉट्स वर्ड्स और एक्शंस में हारमनी है। अगर मैं सोचूं कुछ और बोलूं कुछ और करूं कुछ और तो मेरे अंदर ही डिसहारमनी, अगर मेरे अंदर ही डिसहारमनी है तो फिर मैं बाहर हारमनी कैसे क्रिएट कर सकती हूं फ्रेंड्स, बाहर मेरे रिलेशन कैसे बेटर हो सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर ही डिसहारमनी, मेरे अंदर ही ये बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि मैं जो सोचती हूं मैं वही बोलती हूं वही मैं करती हूं। क्योंकि हम दो तरह की लाइफ जीते हैं, लोगों के लिए कुछ अपने लिए कुछ, है ना। और यही हमारे दुखी रहने का कारण है फ्रेंड, है ना। तो जब हमारे अंदर ये वाली हार्मनी नहीं होगी तो सामने वाले के साथ जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, ट्रस्ट, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये जो वर्ड्स हम इतने बड़े बड़े यूज करते हैं ना रिश्तों में, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं दूसरों के साथ कैसे ऑनेस्ट हो सकती हूँ फ्रेंड, जब मैं अपने आप के साथ ही ऑनेस्ट नहीं हूँ। मैं बाहर किसी को बोलती हूँ कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना है ना, और अंदर मैं झूठ बोलती हूँ। अपने अंदर तो मेरा बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, झूठ तो बोलना ही पड़ता है। दूसरों को मैं बोलती हूँ कि लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से मैं लालच करती हूँ। दूसरों को मैं बोलती हूँ क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से मैं क्रोध करती हूँ। दूसरों को मैं बोलती हूँ कि मोह नहीं करती, लेकिन अंदर से मेरे अंदर मोह के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब तक मैं खुद को प्यार नहीं करती तो मैं दूसरों को प्यार कर ही नहीं सकती फ्रेंड्स। आपने सोचा कुछ और, बोला कुछ और, है ना। इसको किसी और तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लो आपने किसी को कह दिया कि जो ड्रेस आपने पहनी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही, तो सामने वाला बिल्कुल मुरझा जाता है ना। कोई हमें कह दे कि भाई तुम्हारा ये जो ड्रेस है, ये जो तुमने सूट पहना है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हमें लगता है कि अरे सच में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। और हम करते हैं सच में ऐसा, क्योंकि हम दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंडेंट है फ्रेंड्स। अगर अप्रिशिएट कर दिया मान लो मुझे किसी ने, चाहे सच में या ऐसे ही कह दिया आपको, है ना, कि आपका सूट या जो भी आपने ड्रेस है बहुत अच्छा पहना है, तो हमारा जो हैप्पीनेस है ना वो बहुत हाई चला जाता है ना, बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। जो मेरा हैप्पीनेस है वो किस पर डिपेंडेंट हुआ, मतलब मेरा अपने पर कोई विश्वास नहीं है, मुझे पब्लिक ओपिनियन पर डिपेंडेंट हुआ मेरी खुशी, मेरा हैप्पीनेस, मतलब दूसरों की राय पर, अपनी राय पर नहीं। मुझे आदत पड़ जाती है फिर दूसरों की राय पे चलने की, है ना। मुझे दुखी हो जाना चाहिए था या मुझे खुश होना चाहिए था अपनी चॉइस से, क्योंकि मैंने चूज किया, मैंने पहना तो मैं खुश थी ना, लेकिन मेरा हैप्पीनेस दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है ना, क्योंकि मैं अपने पे फिर डाउट करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन मुझे करना क्या है, मुझे सबसे बड़ी बात है, मुझे अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए। अब ये तो बात होगी अपने लिए, है ना, कि मुझे मुझे कोई अप्रिशिएट करे ना करे, तो हम भगवद गीता के स्टूडेंट है तो हमें तो स्ट्रांग होना ही है ना। मान लो भगवद गीता मैं पढ़ रही हूँ तो कोई दूसरा थोड़ी पढ़ रहा है। अगर हमें कोई अप्रिशिएट ना करे तो हमें क्या करना चाहिए, ये बात तो होगी कि मुझे डाउट नहीं करना है अपने पर। कुछ भी सिचुएशन तक ट्रस्ट एग्जांपल था कि मेरे का ड्रेस के लिए, तो उसमें है कि मुझे अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए। कोई भी बात हो, किसी भी बात पे मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो मुझे दुखी नहीं होना है ना। मुझे ये सोचना है कि ये मेरा बेस्ट था उस वक्त, अपने पे डाउट नहीं करना। और अगर अप्रिशिएशन मिल भी जाए तो क्या सोचना है कि मैं इससे भी बेटर कर सकती हूँ। कोई अप्रिशिएट कर भी देता है किसी बात पे, अंदर से ही होना चाहिए कि उसमें भी ओवर एक्साइटमेंट में नहीं चलना है, उसमें भी लगना चाहिए कि मैं इससे भी बेटर कर सकती हूँ, है ना। और किसी ने अगर अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने अच्छा नहीं कुछ कहा, तो अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, है ना, कि मैंने उस वक्त कहा ये बेस्ट था मेरा। और ये बात खाली अपने ड्रेसेस के लिए नहीं है, ये बात जीवन के किसी भी एस्पेक्ट के लिए है। और जीवन के बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, अगर हमें अपने पर फेथ नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो हम किस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं फिर, हम लोगों की ओपिनियन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। लोगों की ओपिनियन देखो वो उनकी है, वो उनके संस्कार पर डिपेंडेंट होती है। जो मेरा डिसीजन लेने का तरीका होगा वो मेरे संस्कार पर डिपेंडेंट होगा, है ना। जरूरी नहीं ना कि वो चीज मेरे लिए बेटर है वो दूसरों के लिए भी अच्छी होगी, है ना। इसलिए हमें अपने पे बिलीव रखना है और दूसरों की ओपिनियन को अपने दिल पे नहीं लेना है ना। एक तो ये बात होगी। तो एप्रिसिएशन का गुण हमें अपने अंदर बिठाना है फ्रेंड्स, है ना। किसी की अंदर आपको अच्छी क्वालिटीज लगती हैं तब भी अप्रिशिएट करो, लेकिन अगर कोई कमजोर भी लगता है तो भी उसको मोटिवेट करने के लिए अप्रिशिएट करो, है ना। जो मैंने पहले बातें बताई वो तो होगी कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे ना। लेकिन हमें कैसे डील करना है उन लोगों को अगर हमें अप्रिशिएशन ना मिले। अब दूसरा टॉपिक की हम कैसे डील करें दूसरों को। देखो अप्रिशिएशन मैक्सिमम लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है फ्रेंड कि समाज में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का एक चेन रिएक्शन है, हर तरफ नेगेटिविटी है। मीडिया में, न्यूज में देखो, है ना, अच्छे कार्य भी हो रहे हैं समाज में और बुरे कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन न्यूज वाले हर वक्त बुरी बुरी न्यूज फैलाते हैं, है ना। अब मेरा बेटा न्यूज पेपर पढ़ता है ना, अब वो बोलता है मम्मा देखो ये मर्डर वाले न्यूज, ये देखो। तो मैं बोला तूने ये वाली न्यूज बिल्कुल ही छोड़ ही देनी, ये वाला पेज बिल्कुल छोड़ देना, उसमें हर वक्त बुरी बुरी न्यूज ही दे रहे होते हैं। यहाँ पे इतने मर्डर हो गए, ये रेप हो गए, है ना, पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये वाली न्यूज चलती रहती है हर वक्त। तो हमें क्या लगता है कि सारी दुनिया ही गलत है, हर जगह गलत काम ही हो रहे हैं। तो इस नेगेटिविटी को तोड़ना है हमें फ्रेंड्स, इसके ऑपोजिट काम करना है। एप्रिसिएशन लीड्स टू पॉजिटिविटी चेन रिएक्शन। बट हम करते क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमें, हम क्यों नहीं बोल पाते किसी के बारे में अच्छा। तो पहली प्रॉब्लम है जो कि हम सब में अहंकार बहुत होता है, किसी और की अच्छी क्वालिटीज देखने के लिए फ्रेंड्स विनम्रता चाहिए, है ना। तो अहंकार को त्याग कर हमें हम्बल होना है, दूसरे की अच्छी क्वालिटीज देखना शुरू करनी है। और दूसरा, क्यों नहीं हम अप्रिशिएट कर पाते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता, हमें पता ही नहीं था कि ये चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है। हमें ज्ञान क्या है कि हमें घर लेना है, गाड़ी लेना है, कपड़े लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है, हॉलीडेज पर जाना इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें हमें इम्पोर्टेंट लगती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि प्रशंसा करना, जो कि प्रभु ने फ्री दी हुई है, ये एक टूल हो सकता है अपने रिश्तों को सुधारने का, खुश रहने का और समाज में पॉजिटिविटी फैलाने का, है ना। और जब सेवा की बात आती है तो लोग पैसों की बात सोचने लग जाते हैं कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, है ना, जब मैं करोड़पति बन जाऊंगी तब मैं सेवा करूंगी। तो ये समझ नहीं है, अगर आप किसी को कुछ प्यार से बात भी कर लोगे, किसी को छोटी सी स्माइल भी दे दोगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फ्रेंड। अब बच्चे हैं, बच्चों को भी कभी हम अप्रिशिएट नहीं करते, जब छोटे होते हैं बच्चे कभी अप्रिशिएट नहीं करते, 60% नंबर आएंगे तो रोएंगे, 70 आएंगे तब भी रोएंगे, 80% आ रहे होंगे तब भी रो रहे होते हैं, 90 आए तब भी रोते हैं। दूसरे बच्चे के तो देखो 95 आए हैं, तुम्हारे नहीं आए। तो अगर आप किसी को मीठा बोल दोगे तो उसका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो वो सेवा ही है फ्रेंड। ये हमें समझनी होती, तो एक तो अहंकार है, दूसरा ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति फ्रेंड्स अपने कंफर्ट्स में, चीजें इकट्ठा करने में, अपने चार लोगों की फैमिली में इतना बिजी होता है ना कि इससे आगे बढ़ ही नहीं पाता वो। तो जब वो सत्संग लगाएगा, अच्छी बातें सुनेगा, गुड बुक्स पढ़ेगा, तो उसको ज्ञान होगा कि अच्छा, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे सत्संग मिल रहे हैं या मैं ऐसी बुक्स पढ़ पा रही हूँ। अप्रिशिएशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें समझ आएंगी, ज्ञान मिलेगा। तो अब आप खुद सोचिए कि मान लो एक हस्बैंड है ना, वो अपनी वाइफ को एक 10 लाख का हार देता है, लेकिन वो हमेशा उसको कड़वी बातें सुनाता रहता है कि देख मैंने तुझे ये हार दिया है ना, लेकिन तुम्हें तो और कोई कुछ नहीं देता है, तुम्हें अपने पेरेंट्स तो कुछ नहीं देते हैं, क्या वो अच्छा फील करेगी? हाँ, उस हार की जगह अगर उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको अप्रिशिएट किया जाता छोटी छोटी चीजों के लिए, तो उसको अच्छा लगता ना। और तीसरा, हम क्यों नहीं कर पाते अप्रिशिएशन, क्योंकि हम साधना नहीं करते, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमारे जीवन में नहीं होती है, हमारे पास वाणी की तपस्या ही नहीं है, हमारा अपनी वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो मन में आता है हम बोलते जाते हैं। और जब सत्संग नहीं है, साधना नहीं है, सेवा नहीं है, तो अंदर तो गंदगी भरी हुई है, कड़वाहट भरी हुई है, उस शब्दों से वही निकलता है, जो अंदर होता है वो एक ना एक दिन तो बाहर निकलता ही है फ्रेंड्स, और प्रशंसा निकल नहीं पाती। और एक और कारण है कि जब हम अप्रिशिएशन नहीं कर पाते किसी की, वो है ईर्ष्या, जेलसी। अगर ईर्ष्या बहुत होगी तो आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे, आप देख भी लोगे कि वो व्यक्ति अच्छा कर रहा है, आपको पता होता है कि दूसरा व्यक्ति अच्छा कर रहा है, बट जलन इतनी होगी कि आप दूसरों को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे, कुछ अच्छा नहीं बोल पाओगे उसको। और पांचवा कारण है अप्रिसिएशन नहीं करने का, कि हम एक्सप्रेसिव नहीं है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते हम लोग, मीनिंगफुल बात करना नहीं आती हम लोगों को। अब दो भाई है, वो पॉलिटिक्स की चर्चा कर लेंगे पर दिल की बात नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, और इस तरह से ये सोच बन जाती है। और एक सोच ये भी बन जाती है कि भाई बचपन से हर वक्त यही बताया जाता है, ये खराब है, ये ऐसे लोग हैं, ये वैसे लोग हैं, बच्चों में मतलब ऐसी अपब्रिंगिंग होती है ना सबकी, ये अच्छा है ये बुरा है, मतलब इस तरह से हम बच्चों में ये बातें डालते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं बच्चों को कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, इनके साथ ऐसे बात करनी है, इनके साथ वैसे बात करनी है, ये ठीक किया, ये ठीक नहीं किया, ये पैसे ज्यादा खर्च कर दिए। अभी बचपन में अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता, कुछ अच्छा भी करते हैं बच्चे तब भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि है तो ये अच्छे हैं, लेकिन अगर इनको अच्छा बोल दिया जाए तो इनका दिमाग खराब हो जाएगा, इनको इनकी कमियां ही बताई जाए ताकि ये झुके रहें। बट इस पूरी प्रोसेस में फ्रेंड्स रिश्तों में एक तनाव बना रहता है, क्योंकि आप सोचो हम एज ए पेरेंट सोचें कि हम क्या सुनना चाहते हैं ना, कोई भी सवाल का जवाब हमारे पास खुद ही होता है जब हम सोचें ना कि हम क्या चाहते हैं दूसरों से, तो हमें सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। हम ये सुनना चाहते हैं हर वक्त हमें हमारी कमियां ही बताई जाए, या कभी कभी ये भी बताया जाए कि आप कुछ अच्छा भी कर लेते हो, कोई अप्रिशिएट ही कर दे हमें, है ना। तो फिर होता ये है कि एक बंदे को जब अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो वे डिमोरलाइज हो जाता है, और वे उस व्यक्ति से बात ही नहीं करना चाहेगा और उस रिलेशनशिप से पीछे हट जाएगा। कुछ टाइम तो चलते हैं ऐसे रिलेशनशिप, लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति पीछे हट जाता है ना। वही लेकिन अगर 80-90% पेरेंट्स बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट ही करते हैं, कभी कभी कुछ गलत होने पर पेरेंट उनको ऑनेस्ट फीडबैक भी देते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए था, तो ज्यादा चांसेस हैं कि बच्चे फिर पेरेंट्स की बात सुन लेंगे और रिलेशनशिप भी बेटर रहेगा फिर, है ना। अब ये यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि उसको उसकी गलतियां नहीं बतानी चाहिए बच्चों को, है ना, बट डिपेंड ये करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है उनके साथ, है ना। मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर बहुत ज्यादा डीमोरलाइज करते हो, अप्रिशिएट नहीं करते हो, तो उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दो बच्चों को, है ना। और अगर 80-90% अगर पेरेंट बच्चों को अप्रिशिएट कर देते हैं तो कभी कभी उनको अगर फीडबैक मिलता है, ऑनेस्ट फीडबैक कि तुम्हें ये ऐसा कर लेना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो ज्यादा चांसेस है कि वो बच्चे सुनते हैं फिर। क्योंकि जब एक व्यक्ति को लगता है ना कि आप जब भी मिलते हो तो कमियां ही बताते हो, तो आप उसको जितना मर्जी लेक्चर दे दो लेकिन वो सुन नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि आपकी इमेज ही ऐसी बन गई है कि ये नेगेटिव ही बोलती है जब भी बोलती है, मुझे सुनना ही नहीं है इसको। वही अगर आपकी इमेज ये है कि जब भी मुझे ये मिलते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, मेरी अच्छी क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं, तो फिर कभी कभी लाइफ में आपको उससे अगर कुछ समझाना भी है ना तो वो फिर सुनता भी है, चाहे वो आप हस्बैंड है तो उनकी वाइफ है या आपका बेटा है। आपको पता कि ज्यादातर आपके हस्बैंड कुछ नहीं बोलते आपको, लेकिन महीने दो महीने में अगर आपको कुछ बोलते भी हैं तो मुझे भी ऐसा कर लेना चाहिए जैसा वो कह रहे हैं मुझे, है ना। तो फीडबैक लेने के लिए दूसरा ओपन हो जाता है ना, क्योंकि वो सोचता है कि नॉर्मली तो ये व्यक्ति मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलता, अगर आज कुछ बोल रहा है तो ठीक है मैं इसको सुन लेती हूँ, है ना। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर हम अगर वर्क करें तो हमारे रिलेशनशिप में एक स्वीटनेस आ जाती है फ्रेंड्स। आप अपने बात करने के तरीके को अगर थोड़ा सा बदल लेते हो, ऑब्वियस बात है कि स्वीटनेस आ जाएगी रिलेशंस में। अगर बैंक में पैसा कम है लेकिन स्वीटनेस है रिश्तों में, तो फिर भी एक दूसरे के साथ रहने में मजा आने लग पड़ता है, बजाय इसके कि बैंक में पैसा बहुत है लेकिन आपस में बहुत कड़वाहट है, तो मजा थोड़ी आता है आपस में रहने का, है ना। तो आजकल घरों में रिलेशंस में बहुत ज्यादा कड़वाहट है, बहुत तनाव हो रखे हैं, बहुत ज्यादा निंदा चुगली होती है एक दूसरे के साथ, हम स्वीटली बात ही नहीं कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो अगर हम सब अपनी बात करने के तरीके को बदलें, वाइफ अपने हस्बैंड की अच्छाइयों को देखे और वाइफ के अंदर हस्बैंड अच्छाइयां देखें और सोचें कि देखो वो अपना घर छोड़कर हमारे घर आई है, है ना, तो क्या हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। एक लड़की ये कितना इजीली कर लेती है, है ना। तो इस बात के लिए अप्रिशिएट कर दें अगर हस्बैंड कि आपने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, अपना घर छोड़ा है, दूसरों के घर में एडजस्ट होना बहुत बड़ा कंप्रोमाइज है ये। और वाइफ अगर ये सोचे कि सारा दिन हमारे हस्बैंड हमारे लिए काम करते हैं ना, हमारी इस फैमिली को चलाने के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए, एक घर लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बच्चों की अच्छी लाइफ बनाने के लिए सारे कंफर्ट्स हमें मिलते हैं अपने हस्बैंड की वजह से, तो वो उसके लिए अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट कर दे। बट होता उल्टा है, जो वो दे रहा है हस्बैंड उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जो वो नहीं दे पा रहा है उसमें हम कमियां निकालते हैं और दोनों ही एक दूसरे पे चिल्ला रहे होते हैं, दोनों ही बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्या पता मेरे क्या स्ट्रगल्स हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लग रहे हैं, एक दूसरे पे ब्लेम चल रहे होते हैं। करना उल्टा है फ्रेंड्स, वाइफ हस्बैंड की स्ट्रगल्स को समझे, उसकी जर्नी के लिए उसको अप्रिशिएट कर दे, और हस्बैंड वाइफ की स्ट्रगल्स को समझे और उसकी जर्नी के लिए उसको अप्रिशिएट कर दे, है ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो कब हमारी जो लाइफ है ना, कब हमारी जो फैमिलीज हैं, मतलब कितनी सुंदर हो जाएंगी, रिलेशनशिप में स्वीटनेस आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा हमें। हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों पे एक्सपेक्ट करते हैं यार कि जैसे मैं अगर वाइफ हूं तो मुझे लगेगा मेरा हस्बैंड ही जो करे बस वो करे, मुझे तो बस गुस्से में रहना है, चिल्ला के ही बात करनी है, हार्शली ही बात करनी है, बात करने का तरीका नहीं आता हम लोगों को, है ना। तो हमें करना उल्टा है, पहले पता नहीं था, अब अगर हमें कुछ नॉलेज मिल रही है और हमें लग रहा है कि वाकई हमें कर लेना चाहिए तो हमें कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, उसके लिए वेट नहीं करनी है। सबसे अच्छा तरीका आज से ही करना है, कोई कल नहीं आने वाला है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने से कैसे हम वर्ल्ड में पॉजिटिविटी का योगदान दे सकते हैं और कैसे ये डिवोशन या डिविनिटी से भी लिंक्ड है ना ये सब चीजें, है ना। देखिये दिव्य गुण क्या है, कैसे क्या होती है डिवाइन क्वालिटीज, जो भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान यही चाहते हैं कि हमारे माध्यम से किसी को हर्ट ना हो, क्योंकि ये भी एक हिंसा है, चाहे वो फिजिकल हिंसा हो चाहे वो इमोशनल हिंसा हो, जब हम कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम सबसे मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम हर किसी के अंदर परमात्मा की प्रेजेंस को फील करते हैं, है ना। हमें सिर्फ ये सोचना है फ्रेंड सिंपल, कि क्या हम चाहते हैं कि कोई हमें कड़वे शब्द बोले, जैसे हमें लगता है ना कि कैसे कोई लोग हमसे बिहेव करे, तो वैसा ही बिहेव हमें दूसरों के साथ करना है। हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ फालतू अपने नेगेटिविटी की बातें करता रहे, रोता रहे हमारे साथ, परेशान हो जाते हैं हम क्योंकि दूसरों की नेगेटिविटी सुन के, परेशानियां सुन सुन के, उनका रोना धोना सुन सुन के, क्योंकि एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं वो लोग। ये वाली चीज ऐसा नहीं है कि लाइफ में कभी एक दो बार आया तो चलो एक व्यक्ति सुनता भी है, लेकिन कईयों का पैटर्न हो जाता है। अगर घर में कुछ भी है तब भी उनको नेगेटिव बात ही कर, कुछ भी होते हैं ऐसा नहीं है, सब कंफर्ट्स होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है उनके जीवन में, लेकिन उनको हैबिट हो जाती है कि गलत ही सोचना है, गलत ही बोलना। तो हमें उनके पैटर्न्स को समझना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर रिएक्शन देने हैं और उनके अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। फिर तो हमें मीठे शब्दों का उपयोग करना है और हर किसी के अंदर परमात्मा का वास देखना है, और हमें ये समझना है कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा का वास है। हमें सबसे अच्छे से डील करना है ताकि प्रभु खुश हो। देखो कमियां सब में होती है, है ना, तो मुझे क्या करना है, हमें दूसरों की कमियों को इग्नोर करना है, उनके अंदर की अच्छी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना है। लेकिन हमारे समाज में क्या सोचा जाता है कि अप्रिशिएशन करने से दिमाग खराब हो जाता है ना। अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर दोगे तो आप उसको मोटिवेट करोगे, फ्रेंड्स उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मोटिवेशन मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने में, तो ये बातें समझना बहुत आसान हो जाएंगी। फिर अगर देखो कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें सुख मिलता है या दुख, सोचो। देखो गोलोक एक्सप्रेस में हमने ये सीखा कि जब भी, देखो इसमें मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, जब मुझे 2017 में जब मैं भगवत गीता से जुड़ी, है ना, तो 2018 में निखिल जी ने कहा कि मोना आप पढ़ा लो, तो वो अलग बात है कि मुझे उस वक्त लगा कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था, तो मैं कैसे पढ़ा सकती थी उस वक्त, तो मुझे ऐसा लगा, है ना। लेकिन जो वो एप्रिसिएशन था ना कि तुम कर सकती हो, तुम नोट्स बनाओ तुम कर सकती हो, मतलब वो जो एक लाइन थी ना निखिल जी की, वो मेरे अंदर छप गई और मेरे मन में रह गया सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं कर सकती हूँ, है ना। और मैं बहुत, मतलब आप बोल सकते हो इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की, पीछे पीछे रहने वाली, मतलब के किसी के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाती हूँ मैं, है ना। तो मतलब मैं आज अपनी बात एक्सप्रेस कर पाती हूँ, अपनी बात रख पाती हूँ, इवन घर में भी और बाहर भी, और मुझे कोई डर नहीं अब किसी भी चीज का, किसी भी बात का, है ना। क्योंकि अंदर से जो फालतू चीजें हैं वो सब निकल जाती है फ्रेंड्स, है ना। और भगवान की बातें, भगवत गीता की जो मतलब पावर है ना जो वर्ड्स में, वो सब अंदर घुसती जाती है। जो आपको बड़ी डिफिकल्ट लगती है ना, फिर जो चीजें वो बहुत इजी लगना शुरू हो जाती है। तो निखिल जी की जो एक बात थी ना, उसने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं ऐसा कह सकती हूँ। मेरा बात करने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका टोटली चेंज। तो कैसे हुआ, मेरे को जो बात अंदर घुस गई कि तुम कर सकती हो, कहाँ मुझे लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाई लाइफ में, ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट मैं होना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, वर्क फ्रॉम होम तो मैं कुछ कुछ काफी चीजें करती रही, लेकिन वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, स्टडीज में नहीं मैं ज्यादा कर पाई, या आर्ट्स मुझे समझ ही नहीं आया कभी। तो उसका मतलब रिजल्ट ये हुआ कि बच्चों को हमेशा बड़ा डीपली पूछ, जैसे सब्जेक्ट साइंस चूज करनी है, कॉमर्स, तो मेरा बहुत कंसर्न रहता है। मुझे वो वाला अपना इंसिडेंट नहीं भूलता कि मैं कभी भी आर्ट्स लेना नहीं चाहती थी और मेरे को आर्ट्स लेना पड़ा, और मैं कभी पढ़ नहीं पाई आर्ट्स को, मैं आगे बढ़ नहीं पाई, मेरे को समझ ही नहीं आता था। उल्टा साइंस के सब्जेक्ट मुझे शुरू से, मेरी साइंस अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट मुझे कुछ समझ नहीं आया। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, वो मुझे कभी भी समझ नहीं आया, पॉलिटिक्स से लेकर मुझे आज भी कभी भी इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, है ना। तो वो जो एक वर्ड था ना कि तुम कर सकती हो, ये जो वर्ड होते हैं ना फ्रेंड्स, हमें नहीं पता होता है ना, लेकिन ये वर्ड कई बार ना दूसरों के, जिसको हम जानते भी नहीं है, ऐसे पर्सनली मैं कभी भी निखिल जी को नहीं मिली है, फोन पे बात हुई है, तो उन्होंने फोन में मुझे कहा था कि तुम नोट्स बनाओ मोना तुम पढ़ा लो, और मेरे को जुड़े अभी 6-7 महीने हुए थे, कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो जो ये अप्रिसिएशन है, जो हम रिव्यूज में हमेशा ये फीडबैक दिया जाता है, है ना, कि आपने बहुत अच्छा बोला, जो इंसान एक लाइन भी नहीं बोल पाता था वो आज आपके सामने है, है ना। आप सबको भगवान की कृपा से समझा पाती हूँ मैं खुद, मेरे को ये नहीं लगता मैं आपको समझा पाती हूँ, मुझे लगता मैं भगवान मुझे समझा रहे हैं। जब भी भगवत गीता मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि आज दिन मेरा बहुत अच्छा निकला, ऐसे मुझे फील होता है। कई टाइम से जैसे टेंशन चल रही हो, कुछ जैसे प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में, लेकिन जैसे भगवत गीता के ये 3 दिन आते हैं ना, तो लाइफ अपने आप भी जैसे लगता है कि ट्रैक पे आ रही है, और ये सच में ये पूरे हफ्ते का डोज मिल जाता है हम सबको, है ना। तो गोलोक एक्सप्रेस में हम यही सीखते हैं, हमारे मेंटर्स ने हमें यही सिखाया कि आप कर सकते हो, मजाक नहीं उड़ाया उन्होंने हमारा कि तुम बोल नहीं सकती, तुम्हें बोलना नहीं आता, है ना। तो ये प्रैक्टिकल प्रूफ है अप्रिसिएशन का, है ना। जो एक साइंटिस्ट की स्टोरी सुनाई मैंने, जिसको कहा जाता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके टीचर ने उनको कहा, है ना, तो उसकी मदर उसको अप्रिशिएट करके उसको साइंटिस्ट बना सकती है। तो कितनी पावर है फ्रेंड्स वर्ड्स, और हम वर्ड्स को ऐसे ही सोचते हैं कि वर्ड्स में कुछ भी पावर नहीं है, एक्चुअली पावर वर्ड्स में ही है। जो हम किससे कैसे बात करते हैं, हम हार्शली बात कर रहे हैं, हम पोलाइटली बात कर रहे हैं, हम ध्यान से सोचते नहीं है इन चीजों को। भगवत गीता का स्टूडेंट बना सकती है, भगवत गीता का टीचर बना सकती है हमें, जो खुश रहे और खुशियां बांटे। हम सब भगवत गीता के स्टूडेंट है, है ना, ताकि हम भगवत गीता पढ़ें, खुद खुश रहें और अपने आसपास का वातावरण भी खुशियों से भर दें। भगवान ने हमें चुना है ना खुश रहने के लिए, आसपास खुशियां बांटने के लिए, है ना। तो एप्रिसिएशन इज सच ए पावरफुल टूल। अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमसे खुश होंगे। और आप चलते फिरते फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा कर रहे हो, है ना, एप्रिसिएशन करते रहोगे तो आप उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो सक्सेस होने के लिए उनके जीवन में। ब्यूटीफुल लव ऑफ टॉकर उनके जीवन में देते हो अपनी तरफ से, चाहे वो बच्चे हैं या जो हमारे रिलेटिव्स हैं, अपनी फ्रेंड्स हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं लोग। और उससे पता चलता है कि आपने पूरे समाज को अपना परिवार माना, सिर्फ वो चार लोगों को नहीं, उसके लिए तो सारी दुनिया जीतती है फ्रेंड्स। एनिमल्स भी जी लेते हैं, वो तो अपने बच्चों का पेट तो हर एनिमल भी पालता है, लेकिन अगर हम किसी की थोड़ी सी मदद ही करते हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे किसी को कुछ थोड़ा सा समझा दे, कोई डाउन फील कर रहा है, कोई दुखी है, तो उसकी थोड़ी सी बात ही सुन ले और उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे। आप किसी को दबाना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो कि सबका विकास हो, तो अगर आप भी अप्रिशिएट नहीं करते हो फ्रेंड्स, तो करना शुरू कर दो, छोटे छोटे प्रयास कीजिए, है ना। बोलना मुश्किल लगता है तो टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। बच्चों को अगर अप्रिशिएट नहीं किया, पेरेंट्स को अगर अप्रिशिएट नहीं किया, है ना, अपने रिलेटिव्स को अगर अप्रिशिएट नहीं किया, फ्रेंड्स को अप्रिशिएट नहीं किया, तो वहां से शुरुआत करो जहां नहीं किया। तो आज आपका होमवर्क रहेगा आज का, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप उन सब लोगों को अप्रिशिएट करोगे जिनको आपने कभी नहीं किया। आप सत्संग में बता सकते हो मुझे, या आप इन 2-3 दिन में जब भी आप करोगे अप्रिशिएट, तो आप मुझे मतलब व्हाट्सएप पे, जो हमारा ग्रुप है स्पिरिचुअल लर्निंग्स, उस पे आप लिख के बता सकते हो कि आपने किस किस को, किस किस ने कैसे कैसे अप्रिशिएट किया। आप फोन पे कर सकते हो अगर आप बोल नहीं सकते हो, नहीं तो एक फोन पे एक कॉल ही कर लो अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, या अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, जिनको आपने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, उनको अप्रिशिएट करना है, ये आपका टास्क है आज का, है ना। तो ये 2-3 दिन संडे तक आपने मुझे बताना है, या वेडनेसडे को भी आप बता सकते हो अपने रिव्यूज में, है ना। ये सोचना कि उन लोगों के अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज, क्योंकि अब तक हम यही सोच रहे थे कि उन्होंने मेरा नुकसान कैसे पहुंचाया, ये मुझसे ऐसी बात करते हैं, इन्होंने तो मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया, मुझसे ऐसी बातें करते हैं, है ना। इसको पूरा उल्टा कर दो, इन्होंने मेरे साथ क्या अच्छा किया, कैसे हेल्प की थी इन्होंने, जो भी उन्होंने अच्छा किया ना उसको याद करो। तो ये सोचकर आपने उस पर्सन को अप्रिशिएट करना है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, है ना। तो दिल खोल कर उनकी प्रशंसा करनी है, तो और आप देखोगे कि आप क्या फील करने वाले हो उसके बाद, देखना कितना हैप्पी फील करोगे आप, और इस एक्सपीरियंस को आप हम सबसे बांटना। जब आप दिल खोल कर अप्रिशिएट करते हो ना लोगों को, तो जीवन में वो ब्लेसिंग्स के रूप में वापस आता है फ्रेंड्स, क्योंकि उनसे वो पॉजिटिविटी आती है, तो वाइब्रेशंस है ना, वो बिल्कुल पॉजिटिव होकर वापस आती हैं, और हम हमेशा ही फिर पॉजिटिव और हैप्पी रहते हैं। और ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितने पैसे हैं, खुश रहने के लिए पैसे को कोई होना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, है ना। यही स्टेट ऑफ माइंड है कि हम क्या सोचते हैं कि खाली पैसे होंगे तो ही हम हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है फ्रेंड्स। जरूरी नहीं है जिनके पास बहुत पैसे होते हैं तो वो खुश रहते हैं। एक झोंपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बहुत खुश रह सकता है, बजाय कि एक महल में रहने वाला व्यक्ति बहुत दुखी रह सकता है, क्योंकि जितनी खुशियां आप बांटोगे ना उतने ही खुश, सिंपल बात है, हम रहने वाले हैं फ्रेंड्स, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन हरी बोल। तो फ्रेंड्स आप रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल।
हरी हरी बोल। मैं अपना रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। थैंक यू मोना दी, थैंक यू सो मच। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। वैसे तो रोज ही हमें पॉजिटिविटी की डोज मिलती है आपसे, बट आज की जो ये सत्संग वाला जो वो था आपका टॉपिक, ये भी बहुत अच्छा था। इससे मेरी ये लर्निंग बनी है कि जैसे हम अपने आप में सोचते हैं कि हाँ हमें कोई अप्रिशिएट करे तो हम उस काम को और डबल पावर से करते हैं, फिर तो ऐसे ही हर किसी को ये एक्सपेक्टेड होता है। बट हम ऐसे माया जाल में फंसे हुए हैं कि हम लोगों की नेगेटिविटी ज़्यादा देखते हैं तो उस वजह से हम उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पाते, जो कि गलत है। बट अब जैसे कि हम आपके साथ जुड़े हैं तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमें बाकियों से अलग कैसे होना है, कि हमें सब में अच्छी चीज़ें देखनी है। बुरी चीज़ें वैसे भी किसी में होती नहीं है, वो टाइम वैसा होता है जो उसको बुरा बना देता है बस। तो जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे तो वो अपने आप और स्ट्रांग होकर हमारे साथ कनेक्शन भी अच्छा बनाएंगे, और मतलब उनको ये भी होएगा कि मेरे को अच्छा ये चीज़ मुझे करनी है, इन्होंने मुझे बोला था तो मुझे ऐसा करना है। दूसरा जो आपने हमें बताया कि हमें डील कैसे करना है, वो सबसे अच्छी चीज़ बताई कि हम अपने बच्चों में खुद ही नेगेटिविटी डालते हैं। और ये पॉइंट बड़ा अच्छा है कि क्यों, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ की, कि हमें नहीं पता सही क्या है और गलत क्या है। जब तक हमें खुद ही नहीं पता होगा हम अपने बच्चों को कैसे बताएंगे। तो इसलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने आप को सही करेंगे तो हमें देख के बाकी सब जो है वो भी अच्छा और सीखेंगे। मैं थैंक यू बोलूंगी आपका भी और मीनू मामी इनका मैं बहुत ज्यादा थैंक यू करूंगी कि उन्होंने मुझे आपके साथ जुड़वाया। उनकी वजह से मैं ऐसे ग्रुप में आई हूँ जिसमें मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ मैं उस ग्रुप का एक पार्ट हूँ जो भगवान से लिंक्ड है। और वो पावर जो हमारे पास है ना वो किसी के पास भी नहीं है, जो हमें इतना वो देती है कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो हम उसे टैकल कर सकते हैं, क्यों हमारे साथ भगवान है। इसीलिए थैंक यू।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू आयुषी जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने पूरे टॉपिक को अच्छे से समराइज कर दिया, कल के भी और आज के भी टॉपिक को। बिल्कुल, हम लोग ना बस हमेशा दूसरों की नेगेटिविटी पे ध्यान देते हैं, पूरा जीवन इसी में बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमें अपने में तो ध्यान नहीं है। अपने फ्री हुए और चलो जी फोन पे लग गए या फिर लोगों की निंदा चुगली में लग गए, फिर फोन पे भी क्या करते हैं हम, सिर्फ निंदा चुगली करते हैं और क्या कर, कुछ सीख थोड़ी पाते हैं, कुछ अच्छी बात थोड़ी करेंगे। कभी भी बताओ लास्ट किसी ने कोई सत्संग की बातें की हो, कोई आपस में डिस्कशन की हो, किसी बुक के बारे में डिस्कस किया हो या भगवान के बारे में डिस्कस किया हो, फालतू बातों में उलझे रहते हैं हम लोग, है ना। खुद भी उलझते हैं दूसरों को भी उलझाते हैं, है ना। तो हमें दूसरों से अलग रहना है, जैसे कि आयुषी जी कह रही है ना, फिर अलग कैसे होंगे हम। हमें पता होना चाहिए कि भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो भी निमित्त मात्र का भाव लेके कि हाँ भाई भगवान ने हमें चुना है, लेकिन ईगो नहीं ले लेनी है कि भाई मैं भगवद गीता पढ़ती हूँ, मैं माला करती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, इन चीजों से भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है फ्रेंड्स। तो निमित्त मात्र का भाव रखना है कि भगवान ने हमें चुना है, एक बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमें चूज किया गया है ना, कि इस जीवन का पर्पस है वो एक अच्छा इंसान बनना और अपने बच्चों को अपने से भी अच्छा बनाना, वो एक ह्यूमन लाइफ का पर्पस है हमारा, है ना। कि अगर हमें बच्चे मिली है, एक ब्यूटीफुल सोल्स मिली है हमें, तो हमें उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे हम हैं उनसे भी आगे लेवल पे, है ना। और खुद को भी लगातार बदलते जाना, यही जीवन का लक्ष्य है और क्या है, है ना। जो मैंने आज तक ये समझा, भगवान क्या कह रहे हैं हमें भगवद गीता में, मतलब जहाँ पे अर्जुन था फर्स्ट चैप्टर में, 18 चैप्टर तक अर्जुन की आप जब देखोगे ट्रांसफॉर्मेशंस, तो कहाँ पे वो स्टैंड हो गया। फर्स्ट चैप्टर में था कि मुझसे नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता, फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे था अर्जुन, जबकि बहुत ज्यादा वो महान बलि था अर्जुन, हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, है ना। लेकिन वो भी जब अपनी प्रॉब्लम से घिरता है, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको भी लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा। जब हम भी परेशान हो जाते हैं तो हम भी छोड़ देते हैं ना सब कुछ, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार हमसे नहीं होगा, कैसे कर पाऊंगी मैं ये चीज, कैसे मैं टैकल कर पाऊंगी ये जो प्रॉब्लम में फंसी हूं मैं, है ना। तब जब भगवान उसके जीवन में आते हैं, अर्जुन के जीवन में आते हैं, तो फिर वो क्या बोलता है कि जो आप कहोगे कृष्णा मैं वही करने को तैयार हूँ, है ना। तो अब हमारे जीवन में भी कृष्णा आ गए हैं, तो हमें भी ये होना चाहिए कि जो आप कहोगे हमें वही करना है। थैंक यू सो मच आयुष जी, ब्यूटीफुल रिव्यू। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स। हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। मुझे आज का सत्संग कहूंगी कि बहुत ही अच्छा और मतलब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड था आज का टॉपिक। सच में फ्रेंड, अगर हम गहराई से इस बात पे आज ही, जैसे मोना जी ने हमें ये वर्क दिया है, तो मैं सत्संग सुनते सुनते ही ये सोच ही रही थी, सच में मतलब हम अपनी लाइफ में, मतलब जो हमारा समाज कह लो या अपने इर्द गिर्द हमारे जो भी नियर्स एंड डियर्स हैं, मतलब हमारी लाइफ में ये बहुत बड़ी कमी है कि हम एक दूसरे को हमेशा मतलब एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करने में लगे रहते हैं, और जो है एप्रिसिएशन से तो हम कोसों दूर होते हैं। और ये प्रभु श्री हरि की कृपा ही है कि हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े, मोना जी का सत्संग अटेंड करना स्टार्ट करा, जैसे कि मोना जी ने बताया आज, और हमने इस एप्रिसिएशन मॉडल को समझा। तो सच में फ्रेंड्स, मतलब हमारे अंदर पहले इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई थी, इवन दूसरों को क्या, हम अपनी फैमिली के चार लोगों को ही अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ आपसे एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूंगी। तो जैसे कि प्रभु श्री हरि की कृपा से मेरे दो बेटे हैं, मतलब शुरू से अच्छे हैं स्टडी में, बट मैंने कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया। प्लस टू के बाद जैसे मेरे बड़े बेटे ने जेईई मेंस वगैरह के एग्जाम्स दिए, तो हमें ये होप थी क्योंकि तब हम नेम फ्रेम के पीछे लगे थे कि आईआईटी क्लियर करेगा, तो उसकी आईआईटी क्लियर नहीं हुई, बट उसको एनआईटी जलंधर मिल गया। तो मेरे को याद है कि जब मतलब उसका रिजल्ट आया, तो मेरे बड़े बेटे की ये वर्डिंग थी, मम्मा आपको तो कोई खुशी नहीं हुई होगी, बट मैं बहुत खुश। तो सच में फ्रेंड्स, हम मतलब मैं ये कहूंगी कि भगवद गीता पढ़ने से पहले, मोना जी के सत्संग से जुड़ने से पहले, हम लोग बस पूरी बातों में उलझे हुए थे, माया में पूरी तरह से उलझे हुए थे, हमें पता ही नहीं था हमें कहाँ क्या बात करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरा साथ ऐसा रहा, अब मैंने सत्संग सुनना जैसे स्टार्ट करा, मोना जी का गोलोक एक्सप्रेस में निखिल जी का सत्संग हम अटेंड करते थे अर्ली मॉर्निंग, अब तो यूट्यूब पे है, पहले गूगल मीट पे होता था। तो फ्रेंड्स, जब मैंने सत्संग निखिल जी का सत्संग अटेंड किया, तो उस टाइम 18 चैप्टर चल रहा था, तो 18 चैप्टर में हमारे सब क्वेश्चंस के आंसर हमें अगर हम डीपली समझे तो मिल जाते। तो उस समय फ्रेंड्स क्या हुआ, तो मेरा मतलब बड़ा बेटा जो NITs उसने करी, जलंधर से बीटेक करी, तो उसके बाद उसने IAS के लिए कोचिंग वगैरह लेनी शुरू करी। तो मतलब एक दो बार उसका प्रीलियम्स क्लियर हुआ, एक बार उसका जेई मेंस भी क्लियर हो, पहले मोस्टली 2-3 बार प्रीलियम्स ही क्लियर हुआ। तो मतलब जब मैं तब स्टार्टिंग में जब वो देता था तो मन में इतनी टेंशन होती थी और हर वक्त यही कि इसका क्लियर हो जाए, ये निकल जाए, मतलब किसी तरह ये IAS बन ही जाए, मेरे मन में ये होता था फ्रेंड्स। पर प्रभु कृपा से जब मैं इस सत्संग से जुड़ी, और जब मतलब 2 टाइम जब मैंने सत्संग सुनना स्टार्ट करा तो उसके बाद 2 टाइम उसने एग्जाम्स दिए। तो फ्रेंड्स ऐसा होता था कि अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अगर उसका मेंस का रिजल्ट आना है, तो मैं मतलब सत्संग सुनती थी तो मेरे मन में ऐसा कोई फील ही नहीं आता था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, प्रभु ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो लास्ट टाइम फ्रेंड्स ऐसा हुआ, अभी मतलब मार्च में उसका मेंस भी क्लियर हो गया था इस साल, और उसका इंटरव्यू था। तो अंदर से तो एक होप थी कि हो जाएगा, बट प्रभु की इसी में भलाई थी कि उसका नहीं हुआ इस बार। तो अब वो बिजनेस में आ गया फ्रेंड्स। तो मैं ये बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अब वो बिजनेस में आ गया है, तो हमारे जो मतलब बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को बताते हैं कि कई लोग बोलते हैं आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, मतलब उसकी प्रे सुनती हूँ ना तो कसम से मतलब हम लोगों में ये हमने ये बात समझी ही नहीं गई कि हमें अपने बच्चों को भी अप्रिशिएट करना है, उसमें प्रभु की कृपा से कितनी सारी क्वालिटीज हैं। हम बस या तो फिर नेम फेम के पीछे भागते रहे कि हमारा बच्चा वहां पहुंच जाए, ये कर ले, उसका नाम हो जाए। तो सच में महाराज जी आज का सत्संग आपका बहुत ही डिवाइन था, और सच में अगर हम अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी बातें मतलब इम्प्लीमेंट करें गहराई से, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दे, जैसे कि मोना जी ने अपना एग्जांपल दिया, तो फ्रेंड्स जैसे निखिल जी की एक वर्डिंग से मोना जी की लाइफ चेंज हुई, अगर आज हम सब इस टॉपिक से ये प्रण करें कि हमें भी ऐसे ही करना है, तो कितने लोगों को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बताए कि कैसे हम बाहर को तो छोड़ो, हम अपने 4 लोगों को भी अप्रिशिएट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स को, हम अपने बच्चों को कब अप्रिशिएट करते हैं? हमेशा हम कंपैरिजन के जाल में फंसे रहते हैं, है ना, कि दूसरे के बच्चे ने इतना कर लिया, मेरे बच्चे ने ये किया। कहीं ना कहीं तो कम हम पड़ ही जाएंगे ना फ्रेंड्स। अगर कुछ IAS बन भी गया तो उसके ऊपर भी लोग बैठे हैं, है ना। तो भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं भाई तुम परफेक्ट हो ही नहीं सकते कभी भी। परफेक्ट सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि है, और कोई भी परफेक्ट नहीं है, फिर परमात्मा परफेक्ट है। हम लोग हमेशा जितना भी अच्छा कर लें, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कम हो ही जाएंगे फ्रेंड्स। ये बात हम समझते नहीं है, और हम इम्पोज करते हैं बच्चों को, है ना, प्रेशराइज करते हैं कहीं ना कहीं। हम ना हमें लगता है कि हम करते नहीं है, लेकिन हमारी बातों से, हमारे बिहेवियर से, मतलब वही बात है ना, वो वाइब्रेशन का हिस्सा है हमारा, जो अंदर का बिहेवियर है, जो हमारी सोच है, वो हमारी वाइब्रेशन का हिस्सा है। हमारे संस्कार बनते हैं उससे, हमारा एक नेचर बनता है उससे, है ना। वही बच्चे वो कैच कर रहे होते हैं, वो बच्चे समझ जाते हैं कि भाई मेरी मम्मा खुश हुई है या नहीं हुई है ना। मेरे को NIT मिला है लेकिन मेरी मम्मा उसमें खुश नहीं है, क्योंकि मेरे को IIT नहीं मिला, है ना। तो हम लोग मतलब उस जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं ना, हम उसको एंजॉय नहीं करते, क्योंकि बड़े की चाह में। गाड़ी अगर हमने 10 लाख वाली ले ली तो हमें 20 लाख वाली गाड़ी देख ली। अगर मैंने पड़ोसी की मान लो, तो मुझे वो वाली गाड़ी के पीछे मैं अपनी ये 10 लाख वाली गाड़ी बड़ी जो मुश्किल से ली है मैंने, वो सारा जो टाइम था ना वो मैंने कंपैरिजन में ही गुजार देना है, वो 4-5 साल के, कब मैं बड़ी गाड़ी लूंगी, कब मैं बड़ी गाड़ी। उसको एंजॉय नहीं कर पाते हम लोग, है ना। लेकिन जब हमें समझ आती है चीजों की, भगवद गीता हम पढ़ते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हम जब समझ रहे हैं, तो रियली हमें समझ आती है कि भी आज को जीना है। कल को क्या पता, जब 20 लाख की गाड़ी आ भी जाएगी तो हमें पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे। जाना तो हमें एक डेस्टिनेशन पे है ना, वो तो हम एक 4 लाख की गाड़ी भी ले जाएगी और वो 20 लाख की गाड़ी ने भी लेके जाना है ना। तो हम आज को एंजॉय कर पाते हैं। अब मैं आपको अपना बताऊं, मुझे ना अभी अपने फ्यूचर की टेंशन है, ना मुझे अपने पास्ट की टेंशन है। कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है, कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ लगता है कि मैं आज को कैसे बेस्ट कर सकती हूँ। मतलब ये चेंज आ जाती है, आपको लगता है आज को मैं बेस्ट कैसे जीऊँ यार, पिछले कल से आज का दिन मेरा अच्छा हो। कई बार बहुत डाउन हो जाते हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा हम अप ही रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत कई बार डाउन फील करती हूँ, कई बार बहुत ज्यादा। अब पिछले वीक मेरा बेटे का एक्चुअली एडमिशन्स का प्रोसेस चल रहा है, कभी कहाँ पे एडमिशन हो रही है, कभी कहाँ पे हो रही है, ऐसा ऐसा चल रहा है 12th के बाद का जो प्रोसेस होता है। तो पिछला वीक मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल था, तो कल जैसे सत्संग हुआ ये बातें फिर से रिवाइज हुई, अंदर गई ये बातें, तो मेरे फिर से मैं फ्रेश होगी बिल्कुल, है ना। कल से मैं बहुत अच्छा अच्छा फील कर रही हूँ, और पिछले वीक से मतलब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा था कि जब चूज करना है चीजों को, जब हमें डिसीजन लेना होता है तो हम वहां पे फिर थोड़ा सा मतलब के सोच सोच के हम थक जाते हैं, टेंशन हो जाती है बच्चों के लिए कोई डिसीजन लेना है तो, है ना। तो सच में जब चीजें पता लगती है तो हम बेटर तरह से परफॉर्म कर पाते हैं, बेटर डिसीजन ले पाते हैं, है ना। थैंक यू सो मच नीना जी। ठीक है, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है? फ्रेंड्स हरी बोल।
हरी हरी बोल। मोना दी, आज का सत्संग सच में बहुत ही अच्छा था, रियली आई ओपनिंग था। सच में आज के सत्संग में मैंने ये सीखा कि हम सब में कुछ पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो हम अपने पॉजिटिव ट्रेट्स को अपलिफ्ट करना है और नेगेटिव ट्रेट्स को रिमूव करना है। अब पॉजिटिव ट्रेट में सबसे इम्पोर्टेंट है एप्रिसिएशन। हम सब अपने लिए तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हर एक कोई अप्रिशिएट करे हमारे काम के लिए। हम जो भी करते हैं, चाहे अगर हम हाउसवाइफ हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, हम किसी की घर में हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हस्बैंड को कर रहे हैं, तो वो हमें अप्रिशिएट करें। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमसे भी कोई एक्सपेक्ट करता है, हमारे हस्बैंड करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, या हम जिस भी फील्ड में हैं वहाँ अप्रिसिएशन होनी बहुत ज़रूरी है। इट इज समथिंग लाइक कि जो हम देंगे वही हमें वापस आता है। तो अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि हम अप्रिशिएट भी एक ना हम इसको बिजनेस ट्रेड बना देते हैं, जहां से हमें कुछ लेने की उम्मीद हो या हमें कि यहाँ से हमें फायदा है, हम वही अप्रिसिएशन भी अप्रिशिएट करते हैं। हम ये इसको भी बिजनेस बना देते हैं कि अच्छा वो उससे हमें फायदा है, हम उसको अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। पर जहां से हमें फायदा नहीं है या कोई हमें, तो उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। तो ये चीजें हमें यहाँ पे भी बैलेंस होना कि हमें ये इसको चीज को भी करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैं अपना, हमारा कॉरिडोर है, हमारे जो फोर्थ क्लास डिपार्टमेंट होता है स्कूल्स में, लाइक हमारी मेड्स हैं, पीएन्स हैं, वो गेट ओपन करते हैं, वो टाइमली मॉप कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। तो मैं आज बारिश थी थोड़ी सी, तो वो फ्लोर क्लीन कर रही थी मैं, तो मैं क्रॉस करने वाली थी तो मैंने देखा मेड क्लीन कर रही हैं, तो मैंने उनको बोला सॉरी दीदी मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ या मैं दूसरी साइड से आ जाती हूँ, आपने अभी क्लीन किया है। और यही चीज ऑब्जर्व की बच्चों ने भी, और उन्होंने भी आंटी को सॉरी बोला कि नहीं हम भी जैसे मैम कह रहे हैं हम भी वैसे ही करेंगे। तो ये है कि एक तो एक पॉजिटिव एक्शन मेरा था, मैंने उनको अप्रिशिएट किया उनके काम के लिए, और मुझे ऑब्जर्व करके जो मेरे बच्चे थे स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी ऑब्जर्व किया और उन्होंने भी ये। तो दिस इज व्हाट कि हम जैसा करेंगे, हमें जो ऑब्जर्वर है, हमारे बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वर होते हैं, उनके साथ हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो हमें रीड कर रहे हो, हमें एक एक टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो हमारी कन्वर्सेशन में है नहीं है, बट वो ऑल द टाइम, जैसे मोना दी ने भी कहा, वो हमें देखते हैं, वो हमारे जैसे कहीं ना हमारी नर्व्स में होते हैं, तो वो अपने आप उनमें ट्रांसफर होता है। तो यहाँ हमें चाहिए कि हमें अप्रिशिएट करना है, उसमें अपना फायदा नुकसान करके नहीं करना, हमने हर एक के साथ एक जैसी फीलिंग रखनी है, और ये बहुत जरूरी है आज के टाइम में, अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज मीनाक्षी जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने भी अपनी फीलिंग शेयर की हम लोगों के साथ। तो आपने देखो कितना अच्छा एक्सपीरियंस बताया अपना, कि जब वहाँ पे वो मेड मॉप कर रही थी तो आपने उसको क्रॉस नहीं किया, है ना, तो आपके आपको ऑब्जर्व किया बच्चों ने, है ना। तो यही बात तो है कि घर में भी बच्चे हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, या रिलेटिव्स हमें या फ्रेंड्स हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, है ना। और हमारे जो रिलेशंस बेटर नहीं होते, वो इसलिए नहीं होते कि हम बोलते कुछ है और हम सोचते कुछ है। जहां पे हमारे सोचने बोलने और करने में बैलेंस आ जाता है ना, वहीं से चीजें ठीक होना शुरू हो जाती है, अपने आप ही चीजें ठीक होंगी। वो ये सब जो लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड किया वो हमने खुद किया हुआ, कि जो भी आज हम है ना एग्जैक्टली वही लाइफ हम चाहते थे आज से 20 साल पहले। अगर आप सोचो तो हम यही चाहते थे कि जो भी लाइफ में आज हम है ना, तो कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे थे इसलिए हमारी वो लाइफ है ना। तो मतलब हम ही है इस लाइफ के क्रिएटर, हम खुद ही इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर और गलत बनाने में हम खुद ही जिम्मेदार है फ्रेंड्स। इसलिए हमें अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, हमें लेनी है फ्रेंड्स, है ना। किसी पे थोपते रहेंगे चीजें कि हाँ उसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हुई है, मेरे हस्बैंड की वजह से, मेरे फैमिली मेंबर्स की वजह से, भगवान की वजह से,
भगवान को कोसने में कौन से पीछे रहते हैं ना, तो उससे कोई पॉइंट नहीं है, उसको कुछ होगा कुछ नहीं। हम अपने को जैसे जैसे बेटर बनाते जाएंगे है ना, जो जो चीजें सताई जा रही हैं वो सीखते जाएंगे, तो 100% है कि हमारी जिंदगी में बेटर तो होना ही होना है ना फ्रेंड्स। अगर हम चाहते हैं कि मेरी लाइफ बेटर हो, तो हमें क्या लगता है कि दूसरे मेरे साथ अच्छे से बात करें, दूसरे मेरे को अप्रिशिएट करें, दूसरे कोई गलत काम ना करें और हम कुछ ना करें, है ना? ऐसा नहीं होगा ना, हमें खुद अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी है कि कोई हमें अप्रिशिएट करे ना करे वो ओके है, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना है खुद से, है ना। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। हाँ जी, तो आज टर्न भी मीनाक्षी जी की है भजन की, तो आप भजन गा सकते हो मीनाक्षी जी। हरी बोल।
हरी हरी बोल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है, थोड़ी देर से मैं चाहती थी कि मैं शिव जी का कोई भजन गाऊं। मैं शुरू करती हूं। भाई शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन धान, खुद को राख लपेटे फिरते औरों को देते धन दान, देवों के हित विष पी डाला नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम, शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीर्थ चारों धाम, करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम, शिव के हाथों में परिणाम, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव की रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम, शिव के रहते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों याम, शिव को भज ले सुख पाएगा, मन को आएगा राम, मन को आई गारा, सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हरि हरि बोल,
हरि हरि महादेव,
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ब्यूटीफुल भजन, बहुत ही प्यारा भजन गाया आपने, बहुत ही आनंद आया मीनाक्षी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स अब प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। घर घर मंदिर हर मन मंदिर, जय श्री राधे कृष्णा।